Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dashashloki, presented by Swami Sri Vishnu Vallabhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Sri Shankar Bhagavat Pada Virachita Dashashloki Na bhumir na toyam na tejo na vayur na khamne indriyam va na tesham samu anaikantikatvat susupti kasidhas adeko vasishtah shivah kevaloham नवर्णानवर्णाश्रमाचार धर्मा नमे धारणाध्यात योगादयोपि अनात्माश्रयाहं ममाध्यासहानात् तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम् न माता पिता वा न देवा न लोका न वेदा न यज्ञा न तीर्थम् सुषुप्तौ निरस्तातिशूल्यात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम् न सांख्यम् न शैवम् न ततो पांचरात्रम् न जैनम् न मीमांसकादे मतम् वा विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम् न चोर्ध्वम् न चादो न चान्तर्न बाह्यम् न मध्यम् न तिर्यम् न पूर्वापराधिक् वियद्व्यापकत्वात् अखण्डैकरूपस्तदेको न शुक्लम् न कृष्णम् न रक्तम् न पीनम् न कुब्जम् न पीतम् न ह्रस्वम् न दीर्घम् अरूपं तथा ज्योतिराकारकत्वात् तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम् न शास्ता न शास्त्रम् न शिष्यो न शिक्षा न च त्वम् न चाहम् न चायम् प्रपञ्च स्वरूपावबोधो विकल्पा सहिष्णु तदेको वशिष्ठ शिवः केव न जाग्रन्न मे स्वप्न को वा सुषुप्तिर्न अविद्यात्मकत्वात्त्रयाणां तुरीयस् तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम् अपि व्यापकत्वाधितत्व प्रयोगात् स्वतः सिद्धभावात् अनन्याश्रयत्वात् जगत्तुच्छमेतत् समस्तम् तदल्यत् तदेको न चैकम् तदन्यद्वितीयम् कुतः स्यात् न वा केवलत्वम् न चाकेव न शून्यम् न चाशून्यमद्वैतकत्वात् कथम् सर्ववेदान्तसिद्धम् ब्रवीमि दशश्लोकी का जो ये पहला श्लोक है इसके अनुसार बाकी सभी श्लोकों में संगति लग जाती है अपने आप। सबका निषेध किया है, पांच भूतों के निषेध करने के बाद वर्ण वर्णाश्रम आचार धर्म धारणा ध्यान योगादयोपी, क्योंकि ये सब अनात्माश्रय अहम मम अध्यास हानात्। जब इस अध्यास की हानि हो जाए अर्थात निराकरण हो जाए इसका, तब एकमात्र तदेको वशिष्ठ शिव केवलोहम। अध्यास का क्या स्वरूप है, इसके ऊपर कैसे विजय प्राप्त करनी है, इसको किस तरह से निवृत्त करना है, जिसके लिए आचार्य शंकर ने हम सब के ऊपर बड़ी कृपा की। बड़े ग्रंथों को यदि हम नहीं पढ़ सकते नहीं समझ सकते तो कम से कम इस दशश्लोकी के माध्यम से तो चिंतन कर ही सकते हैं। बात ये चल रही है कि अध्यास का स्वरूप है कैसा और कहां से ये प्रारंभ होता है, इसका स्वरूप कैसा है। जैसे शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बन सकता लेकिन मिल जाने के बाद हो जाता है, वैसे ही जो शुद्ध आत्मा है वह तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही है। परम विशेषण लगा दो तो नाम पड़ गया परमात्मा। जीव रूपी उपाधि से युक्त हो जाने के बाद उसी का नाम पड़ गया जीवात्मा, और उसके अतिरिक्त जब जीव भाव को स्वीकार किया तो शरीर आदि में जो आत्मत्व बुद्धि है तो देहात्मवादी इंद्रियात्मवादी मन को आत्मा मानने वाले बुद्धि को आत्मा मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। आत्मा है तो हमारे शरीर में ही, और शरीर में किसी एक जगह में ऐसा भी नहीं है। जितनी इंद्रियां हैं मन है बुद्धि है शरीर है सब में वो व्याप्त है। कैसे है वो, तो जैसे गीता के 15वें अध्याय में एक श्लोक आता है आत्मनि अवस्थितम यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम और यतन्तो अपि अकृतात्मानो न एनम पश्यन्ति अचेतसः। चेतसः और अचेतसः कह करके दोनों में भेद किया। जो विवेक शून्याहा बहिर्मुखाहा, आत्मा इसी शरीर में है लेकिन इसकी उपलब्धि किसको होती है और किसको नहीं हो पाती। जब तक हम बहिर्मुखी रहते हैं तब तक तो शरीर में आत्मा के होते हुए भी ऐसा लगता है कि कहीं कुछ करना पड़ेगा, हठ योग नाद योग बिंदु योग ये सब क्यों करते हैं। आजकल की बात करें सवेरे चलो जी कहां योगा क्लास, योग क्लास नहीं क्या नाम है उसका योगा, अंग्रेजी में ऐसे चलता है हरे रामा 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 थोड़ी होता है रामो, लेकिन स्पेलिंग लिखेंगे तो आर ए एम ए राम हरे कृष्णा के आर आई एस एच एन ए कृष्णा, लेकिन उच्चारण कैसे होता है हम लोग जो करते हैं श्री कृष्ण शरण मम श्री कृष्णा नहीं बोलते। तो उसी तरह से योग क्लास की जगह हो गया योगा क्लास। तो उसी योगा क्लास का फल क्या निकला, बोले शरीर जो है स्लिम बॉडी, घुटने के दर्द ठीक हो जाएंगे, कमर के दर्द ठीक हो जाएंगे, मोटापा कम हो जाएगा, कई प्रकार की व्याधियां ठीक हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी जो मनोरोग की जो रूपी जो आधी है, आधी और व्याधि बोलते हैं ना, तो उस आधी का इलाज कैसे होगा, इसके लिए अपने यहां थोड़े उन प्रक्रिया से हट करके हमारी अपनी प्रक्रिया अलग है। बाह्य वस्तुओं का आलंबन लेकर के जो मन को एकाग्र किया जाता है ये सब के सब तात्कालिक हैं। चाहे किसी मूर्ति को रख करके, किसी वस्तु को रख करके, प्रायः पांच भूतों का जो हम लोग दिन रात सेवन करते हैं, उन्हीं में से किसी विषय को हम अपने ध्यान का, मन को एकाग्र करने का भी साधन बनाते हैं। उन्हीं पांच विषयों में से किसी को कैसे, बोले जब ध्यान लगाना हो, मन न टिके, तो एक कोई बढ़िया कैसेट ले आओ। किसके कैसेट लाना है, बोले कोई संगीत, कोई धुन और बजा दो और फिर बैठ जाओ ध्यान में। ये हो गया बाह्य आलंबन के द्वारा मन को एकाग्र करने का तरीका। उसी प्रकार से उससे भी नहीं हुआ तो कोई अगरबत्ती जला लेते हैं और उसकी सुगंधि जो आती है उसी में अपने नाक को टिका दिया और बोले क्या कर रहे, कहा ध्यान कर रहे। मूर्ति आदि रख लो, फोटो रख लो रूप में टिका करके और इस प्रकार से ध्यान करो। लेकिन हम लोगों की अपनी प्रक्रिया अलग है। परमात्मा इस शरीर में है, इसको उपलब्ध कैसे करना है, एक छोटे तौर पर एक उदाहरण से समझिए। गंगा जी प्रवाहित हो रही है गौमुख से गंगोत्री, गंगोत्री से उत्तरकाशी होते हुए भी देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार। कहां से गंगा जी निकल रही है, हरिद्वार में नहाने वाले को पता नहीं गंगा जी कहां से आ रही है। ये तो जो गौमुख हो आए अथवा जिन्होंने पढ़ लिया समझ लिया उनको मालूम है, बाकी गांव के कोई ऐसा भी आदमी आता होगा उसको इतना मालूम है कि बहता हुआ पानी उसमें हमें नहाना है। तो हरिद्वार जब पहुंचे तो गंगा जी की शीतलता, स्वच्छ जल, गर्मी का महीना है, नहाने से शरीर ठंडा होता है, इस बात को जानने के लिए गवार से गवार आदमी को कुछ पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इस गंगा जी में ऐसी विशेषता है, इस जल को घर में ले जाओ कभी कीड़े नहीं पड़ते, बाकी जल का तो हमें नहीं पता लेकिन गंगा जल की तो गारंटी है अभी भी। जबकि हरिद्वार आदि में जब गंदगी देखते हैं, कई बार वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि अब गंगा जल ऐसा नहीं रहा, लेकिन आज तक उन्होंने रिसर्च किया कीटाणु नहीं मिला उसमें, कुछ न कुछ तो विशेषता है। तो उसके जो दवाई के गुण हैं अथवा भैषज जो गुण है, बड़ी बड़ी चिकित्सा भी हो सकती है गंगा जल से। हमारे यहां तो कहते हैं यदि आंतरिक शुद्धि करनी हो तो अंतर मन विनाशाय स्मरेत भक्षेत जपेत पिबेत, ये आप लोग भी याद कर लो, क्योंकि आंतरिक सफाई हुए बिना उस आत्मा की अनुभूति हो नहीं सकती है। अंतर मन विनाशाय हरिम हरित किम चैव गायत्रीम जाह्नवी जलम, अंतर मन विनाशाय स्मरेत भक्षेत जपेत और पिवेत। हरिम भगवान हरि का स्मरण करो, इससे क्या होगा, मन शुद्ध होगा। हरिम स्मरेत और हरित किम भक्षेत, हरण क्या करो, खाओ। हरण खाने से अंदर की सफाई होती है। हरिम हरित किम चैव, कुछ लोगों को कहो ना हरण खाओ। हाँ हरण, हरण क्या बोलते, हरण बोलते हर्रे, वही त्रिफला चूर्ण जो बनता है, हर्रा बहेड़ा और आंवला तीनों को मिला के बन गया त्रिफला, वही हर्रे हर्रा, केवल हर्रा हरण। हाँ तीनों को मिला के बन गया त्रिफला और केवल हर्रे होगा एक फला, और दो मिला दिया त्रिफला। तो हरिम स्मरेत और हरित किम भक्षेत, अब यदि हरण खाने का तरीका बताए ना, तो कांसे का बर्तन आता ना कटोरा, उसमें भिगा दो रात्रि में और सवेरे उसका पानी पी जाओ। अब ये झंझट कौन करे, भिगाने का, छानने का, पीने का। और वही हरण बोरियों में लाद के शिप से ले जाओ अमेरिका, वहां पीस करके गोली बना दे, बोले मेड इन यूएसए। अब वो गोली आ जाए बंबई, किसी दोस्त ने ला करके दे दिया, बोले ये खाना पेट के लिए बहुत अच्छा है, खाया बहुत फायदा हुआ, बोले और भी पत्ती ले आना, जितना भी पैसा लगेगा हम देंगे। लेकिन घर में उसी को भिगा के पीना छानना, ये झंझट कौन करे। मेड इन यूएसए हो तो ठीक है, अब यूएसए का मतलब ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी होता है, और उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन भी हो सकता है। अब कहां की गोली है तो पता नहीं, दोनों होता है ना यूएसए। हरिम हरित किम चैव गायत्रीम गायत्रीम जपेत, क्योंकि गायते हुए ही जो त्राण रक्षा करे, जो बचा ले वे, कल्याण कर दे, उसी का नाम गायत्री है। गायत्री वेद माता है। गायत्रीम जपेत और गंगा जलम जाह्नवीम पिबेत, गंगा जल पीने का इतना बड़ा फल है। ऐसे गंगा जी के जो गुण है, पढ़ने वाले पढ़े लिखे लोग तो समझते हैं, लेकिन अनपढ़ लोग भी अनजाने में भी यदि गंगा जी में स्नान करे, शीतलता का अनुभव होना, गर्मी की निवृत्ति होना, और साथ में गंगा जल में नहाने से बहुत बड़ा पुण्य भी माना गया। अब इसका जो महात्म्य है, कुंभ मेला चल रहा था, बहुत सारे ऋषि लोग आते हैं कुंभ में, तो मज्जंती ऋषय सर्वे, गंगा जी पूछती है जब नारद जी वहां खड़े होकर देख रहे हैं लोगों को नहाते हुए, तो गंगा जी ने पूछा कि मज्जंती ऋषय सर्वे कथम तुम न निमज्जसे, कि सारे ऋषि लोग इसमें नहा रहे, तुम क्यों नहीं नहा रहे हो। नारद जी से पूछा गंगा जी ने, नारद जी बोलते हैं गंगेते दर्शनात मुक्ति ही न जाने मज्जने फलम, हमने तो हे मां ऐसा सुना है कि आपके दर्शन करने से ही मुक्ति मिल जाती है, तो गोता लगाने के बाद कौन सा ऐसा फल है जो मिलता होगा, क्योंकि तो मुक्ति से बढ़ करके तो कोई दूसरा फल है नहीं। ये तो हो गए दर्शन का फल, कहा तो यहां तक जाता है गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानाम सतैरपी, सौ योजन दूर से ही यदि गंगे 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 ऐसा बोले ना, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानाम सतैरपी मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो गंगा के महात्म्य को जानने वाले को सब पता है, लेकिन जिनको यह श्लोक नहीं आता, कहां पर गंगा जी की इतनी बड़ी महिमा लिखी है। गंगा जी के स्तोत्र जब पढ़ते हैं ना, पहला श्लोक बहुत सुंदर है, आचार्य ने लिखा है, क्या है, भगवती तव तीरे नीरमात्राशनोहम विगत विषय तृष्ण कृष्ण माराधयामी सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। ये गंगा जी का भाव है। भगवती तव तीरे, हे भगवती आपके किनारे, नदी के किनारे बैठ करके, नीर मात्र अशनोहम, मैं चाहता हूं कि गंगा जी के किनारे रह करके केवल गंगा जल का पान करूं। हरिद्वार में नहीं पीने की इच्छा हो, थोड़े और ऊपर चले जाओ, कहीं है लोग गंगा जल ही पीते हो, कितने भी मटमैला हो बाल्टी में भर के ले आओ, थोड़ी देर छोड़ दो, सारे रेता नीचे बैठ जाएगा, पानी स्वच्छ ऊपर। भगवती तव तीरे नीर मात्रा शरोहम विगत विषय तृष्ण कृष्ण आराधयामी। गंगा जल, थोड़े उसमें कालिमा भी है, कृष्णा कहकर के संबोधित किया, ऐसा जो आपका स्वरूप है, संपूर्ण विषयों से वैतृष्ण होकर के केवल आपकी ही आराधना करूं, सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे, आपके दर्शन से आपका पान करने से संपूर्ण पापों की निवृत्ति हो जाती है, सकल कलुष भंगे और स्वर्ग सोपान संगे। स्वर्ग में जाने के लिए एक सीढ़ी है ये, जैसे जैसे ऊपर जाओ ना, सबसे ज्यादा स्वर्ग का अनुभव कहाँ होता है, आप में से कोई गए कि नहीं, स्वर्ग तो नहीं गए लेकिन स्वर्ग जाने का अनुभव, क्या बात है, आप लोग हंस रहे हो, इस शरीर को जब तक हम लोग रखते हैं ना, जब तक ये जीवित है तब तक तो मुंबई दिल्ली इसकी बात चलती है, एक क्षण प्राण निकला बोले स्वर्गीय हो गए, सीधे स्वर्ग का ही एड्रेस बताते हैं उसका, बीच में कहीं और नहीं जाता, सीधे कहां गए, स्वर्गे भव स्वर्गीय, स्वर्ग में रहना होना ही स्वर्गीय है। तो ये अनुभव यदि करना हो, ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, नीचे बता देता हूं, ऐसे तो एक नेपाल में जगह है, उसका नाम है स्वर्ग द्वारी, बहुत अच्छी जगह है, वहां की विशेषता है, बहुत विद्यार्थी पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं और रोज हवन होता है, और उस हवन कुंड में जो भस्मी होती है और वहां नारियल, ये वो प्रसाद में देते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग बहुत जाते हैं वहां, नेपाल में है ये स्वर्ग द्वारी, ये दांग जिला है, दांग पश्चिम नेपाल की तरफ है, जाना चाहिए, अभी मत जाना थोड़े रुक के, तो वो जो स्वर्ग द्वारी है वहां हवन कुंड के फोटो खींचो ना, कैमरा में फोटो नहीं आती, ये भी एक चमत्कार है। तो वो तो स्वर्ग द्वारी है, और सीधे जो पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, आचार्य शंकर तो निर्वाण पद को प्राप्त हुए जो केदारनाथ से ऊपर है, केदारनाथ आप गए होंगे तो पीछे शंकराचार्य जी का मंदिर है, अपने शिष्यों से कहा कि अब मैं जा रहा हूं, वहीं से उन्होंने प्रयाण किया, और पांडवों ने जो प्रयाण किया स्वर्गारोहण किया, बद्रीनाथ के आगे है माना गांव, माना गांव से थोड़ा आप आगे जाएंगे तो सरस्वती नदी वहीं दिखाई देती, वहां दर्शन होता है सरस्वती नदी का, बहुत भयंकर रूप है, देख के डर लगता है, और उसके ऊपर एक बहुत बड़े पत्थर की चट्टान रखी है, उसका नाम है भीम पुल। जब जा रहे थे तो कैसे पार करेंगे, तो भीम ने एक पत्थर ला के रख दिया, इसलिए भीम पुल बन गया, नीचे से सरस्वती निकल रही है और अलकनंदा में मिल जाती है, और वहां से जैसे धीरे धीरे चलोगे तो गंगा जी के जो पुत्र है अष्टवसु जो कहते हैं, वही है वसुधारा, वसुधारा में जाओ स्नान करो, पूरा दिन लग जाता है आने जाने में, 6-7 किलोमीटर होगा मुझे लगता है, सवेरे निकलो, बद्रीनाथ में रुकना पड़ेगा, और वहां से देखो ये स्वर्गारोहण की बात बता रहे हैं, वसुधारा में जाओ, क्या ठंडी, ठंडे पानी में नहाओ, धूप अच्छी तेज निकलती है, धूप सेको और साथ में जो अपने ले गए खाने पीने का खाओ, और फिर धीरे धीरे हाथ में डंडा लेके जाना, जो नहीं चल पाते टोकरी में भी ले जाने वाले मिल जाते हैं, लेकिन ये सब यात्रा करनी चाहिए स्वस्थ रहते हुए, नहीं तो कई बार ऑक्सीजन की समस्या आती, कभी कुछ होता है तो फिर नीचे वाला स्वर्ग तो नहीं मिलेगा, फिर ऊपर जाना पड़ सकता है, तो ये दिक्कत है। स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे, गंगा जी में जो तरंग उठ रही है, ऐसा तरल, तरल मतलब होता है द्रवित, तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद, रावण तांडव स्तोत्र बोलते कदा निलिम पनीर झरी निकुंज कोटरी वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थम अंजलिम बहन, विमुक्त लो ललोचनो ललाम भाल लग्नक शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्य हम। एक भाव है, बंबई में आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हो, सवेरे से आपकी तैयारी होती होगी, नहाना है, धोना है, अपने नित्य कर्म करना है, फिर सत्संग में जाना है, सत्संग के बाद भी ये करना है, वो करना है, तो आपने तो अपने को यही तीर्थ बना लिया। यही तो चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि हरिद्वार में रह करके सब ऐसे करते होंगे, बल्कि उल्टा होता है। गंगा जी के किनारे रहने वाले नहीं नहाते, विश्वनाथ जी के मंदिर में देखा, बनारस में गलियों में दुकानदार लोग नहीं जाते दर्शन करने, कुछ है नियम वाले जो जाते हैं विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद ही दुकान खोलते हैं, ऐसे भी है। लेकिन कोई ये जरूरी नहीं है कि सब लोग करते हो, तो आप बंबई में रह करके भी वही काम कर रहे हो। एक माता जी थे ना, आप लोग शायद जानते कि नहीं, खार में आनंदपुरी माता जी,